नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 21 मई 2021 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की घोषणा का स्वागत, हिंसा से गाजा में बच्चों के लिए उपजे नारकीय हालात, यूएन महासचिव ने जताया क्षोभ। साधन संपन्न देशों को करनी होगी कोविड 19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई की अगुवाई, G20 समूह की बैठक में पुकार। कोरोना वायरस संकट के असर से अब तेजी से उभर रहा है वैश्विक व्यापार। और एक खास बातचीत, दक्षिण सूडान में यूएन मिशन में सेवाएं प्रदान कर रहे युवा भारतीय शांति रक्षक कैप्टन दीपक परिहार से। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने इसराइल और फलस्तीनी चरमपंथी गुट हमास के बीच युद्ध विराम की घोषणा का स्वागत किया है। यूएन प्रमुख ने गुरुवार शाम न्यूयॉर्क में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया,
I welcome the ceasefire between Gaza and Israel after 11 days of deadly hostilities. I extend my deepest condolences to the victims of the violence and their loved ones.
महासचिव गुटेरेश 11 दिनों की घातक हिंसा व लड़ाई के बाद हमास और इसराइल में युद्ध विराम का स्वागत कर रहे थे। उन्होंने इसराइल और काबिज फलस्तीनी इलाकों में इस हिंसा के पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। 11 दिनों से जारी इजरायली हवाई कार्रवाई और हमास द्वारा इसराइल पर किए जा रहे रॉकेट हमलों में 240 से अधिक लोगों की मौत हुई है और हजारों घायल हुए हैं। इनमें से अधिकांश हताहत गाजा में हैं, जिनमें 60 बच्चे हैं। इसराइल में हमास और अन्य चरमपंथी गुटों द्वारा किए गए रॉकेट हमलों में 12 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले यूएन प्रमुख ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा था कि गाजा में हिंसा प्रभावित इलाकों में बच्चे नारकीय हालात में जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने गाजा में इजरायली सुरक्षा बलों की हवाई कार्रवाई और बमबारी से हुई तबाही पर गहरा दुख जताया और हमास द्वारा इसराइल पर अंधाधुंध रॉकेट हमलों को अस्वीकार्य करार दिया। हिंसा में गाजा के नागरिक प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। यूएन प्रमुख ने मध्यस्थता प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिस्र और कतर से मिले सहयोग के प्रति आभार जताया, जिससे गाजा और इसराइल में शांति बहाल करने में मदद मिली है। महासचिव गुटेरेश ने सभी पक्षों से युद्ध विराम का पालन करने का आह्वान किया है।
I stress that Israeli and Palestinian leaders have a responsibility beyond the restoration of calm to start a serious dialogue to address the root causes of the conflict.
यूएन प्रमुख आगाह कर रहे थे कि अब इजरायली और फलस्तीनी नेताओं का दायित्व है कि शांति बहाली से आगे बढ़ते हुए आपसी टकराव के मूल कारणों को दूर करने के लिए गंभीर बातचीत की शुरुआत की जाए। यूएन प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय साझेदारों के सहयोग से इसराइलियों और फलस्तीनियों के साथ मिलकर काम करने के अपने मजबूत संकल्प को रेखांकित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने विश्व की सबसे धनी अर्थव्यवस्थाओं से आग्रह किया है कि कोविड 19 महामारी का अंत करने के लिए उन्हें अग्रणी भूमिका निभानी होगी। यूएन प्रमुख ने शुक्रवार को रोम में G20 समूह की वैश्विक स्वास्थ्य शिखर बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हरेक व्यक्ति के लिए हर स्थान पर वैक्सीन मुहैया कराए जाने के प्रयासों को मजबूती प्रदान की जानी होगी। उन्होंने G20 समूह से एक ऐसी टास्क फोर्स के गठन की अपनी मांग दोहराई, जिसके जरिए औषधि बनाने वाली कंपनियों और अन्य पक्षधारकों के साथ मिलकर मौजूदा रुकावटों को दूर किया जा सके। इनमें संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स पहल के तहत कोविड 19 वैक्सीन का विश्व भर में न्यायोचित वितरण भी है। बताया गया है कि स्वैच्छिक लाइसेंस, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा के मुद्दे पर लचीले रुख सहित अन्य सभी विकल्पों की मदद से वैक्सीन उत्पादन क्षमता को दोगुना किए जाने का लक्ष्य होगा। इस टास्क फोर्स में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वित्तीय संस्थाओं और अन्य साझेदार संगठनों के साथ साथ उन सभी देशों को शामिल करने की बात कही गई है जिनमें वैक्सीन उत्पादन और उसकी वैश्विक आपूर्ति की क्षमता है। विश्व में कुल वैक्सीनों का लगभग 80% हिस्सा धनी देशों के पास गया है, जबकि निर्धन देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन का महज 0.3% ही मिल पाया है। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 16 करोड़ 50 लाख मामलों की पुष्टि हुई है। इस महामारी से 34,22,000 लोगों की मौत हुई है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि वास्तविक मृतक संख्या आधिकारिक आंकड़ों से 2-3 गुना अधिक हो सकती है। यूएन एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि जिन मौतों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोविड-19 को जिम्मेदार ठहराया गया है, उन्हें उनकी वास्तविक संख्या से कम आंका जा रहा है। संगठन के मुताबिक पिछले वर्ष 18 लाख मौतों की पुष्टि की गई थी, मगर यूएन एजेंसी की रिपोर्ट में पिछले वर्ष मृतक संख्या कम से कम 30 लाख होने का अनुमान जताया गया है। यानी कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ की वजह से पर्याप्त देखभाल न हो पाने और अन्य कारणों से हुई 12 लाख अतिरिक्त मौतें। उधर दक्षिण एशिया में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के क्षेत्रीय कार्यालय ने निजी बचाव पोशाकों, कोविड-19 टेस्टिंग किटों और अन्य उपकरणों और चिकित्सा सामग्री के लिए 16 करोड़ डॉलर की अपील जारी की है। नेपाल, भारत सहित दक्षिण एशिया के अन्य देशों में कोरोना वायरस संक्रमण की जानलेवा लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी बोझ है। इसी सप्ताह भारत में एक दिन में 4,500 से अधिक मौतें हुई, जो पिछले वर्ष महामारी फैलने के बाद अब तक देश में एक दिन में सबसे अधिक मृतक संख्या है। पड़ोसी देश नेपाल में भी कोरोना वायरस परीक्षण के पॉजिटिव होने की दर 47% तक पहुंच गई है और श्रीलंका व मालदीव में भी संक्रमण और मृतक संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की नई रिपोर्ट दर्शाती है कि वैश्विक व्यापार कोविड-19 महामारी के असर से अब तेजी से उभर रहा है। इस साल की पहली तिमाही में सामान आधारित व्यापार का मूल्य महामारी से पहले के स्तर को भी पार कर गया, मगर सेवा क्षेत्र में कोरोना वायरस संकट का असर अभी जारी है। पूरे ब्यौरे के साथ अंशु शर्मा।
बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 की पहली तिमाही में व्यापार में आए सुधार के लिए पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का निर्यात क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन है। बताया गया है कि महामारी के असर को कम करने में इन अर्थव्यवस्थाओं को शुरुआती सफलता मिली, जिसके परिणाम स्वरूप उनके लिए तेजी से उबरना संभव हो पाया। साथ ही उन्हें कोविड-19 संबंधी उत्पादों के लिए वैश्विक मांग में आई उछाल का भी लाभ मिला। पांचवी तिमाही में वैश्विक व्यापार कोरोना वायरस संकट से पहले के स्तर की तुलना में अधिक हो गया है। वर्ष 2019 की चौथी तिमाही की तुलना में 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 की पहली तिमाही में सामान आधारित व्यापार का मूल्य महामारी के पहले के स्तर से अधिक है, मगर सेवा आधारित व्यापार अभी औसत से कहीं कम है। कोविड-19 संबंधी उत्पादों में वैश्विक व्यापार में तिमाही के दौरान मजबूती बनी रही। विश्व की कुछ बड़ी व्यापारिक अर्थव्यवस्थाओं में आयात और निर्यात संबंधी रुझान दर्शाते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार वर्ष 2020 में आई गिरावट से उबर गया है। हालांकि इस बढ़ोतरी के लिए 2020 में व्यापार के निचले स्तर को जिम्मेदार बताया गया है। अनेक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार अब भी वर्ष 2019 के औसत से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन वर्ष 2021 की पहली तिमाही में अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर रहा है। विशेषकर चीन से होने वाले निर्यात में न सिर्फ 2020 के औसत बल्कि महामारी के स्तर के पहले की तुलना में भी मजबूत बढ़ोतरी हुई। इसके विपरीत रूस से होने वाला निर्यात 2019 के औसत से कम ही रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार में होने वाली पुनर्बहाली असमान है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। पूर्वी एशिया में निर्यात क्षेत्र में तेज सुधार दिखाई दिया है। Q1 2021 में व्यापार में आई तेजी महज कोविड-19 संबंधी उत्पादों जैसे कि औषधि, संचार, कामकाज के लिए जरूरी सामग्री तक सीमित नहीं है। खनिज और कृषि भोजन में भी बेहतरी दर्ज की गई है, मगर ऊर्जा क्षेत्र अभी पीछे है और परिवहन उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी औसत से कम नजर आ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पर्यावरण संरक्षण प्राप्त क्षेत्रों के विषय में तय लक्ष्यों पर व्यापक प्रगति दर्ज की है, मगर इन क्षेत्रों की गुणवत्ता के संबंध में निर्धारित संकल्पों को साकार नहीं किया जा सका है। साथ ही जैव विविधता की रक्षा पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और उसके साझेदार संगठनों द्वारा जारी रिपोर्ट में ये बात कही गई है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
वर्ष 2020 तक कम से कम 17% भूमि व अंतरदेशीय जल क्षेत्र और 10% समुद्री पर्यावरण क्षेत्र के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया था। अभी पूर्ण रूप से आंकड़े उपलब्ध नहीं है, मगर फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक पहले लक्ष्य के सिलसिले में प्रगति 16.6% आंकी गई है। समुद्री पर्यावरण के विषय में 7.7% संरक्षण का लक्ष्य हासिल किया गया है। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट शीर्षक वाली यह रिपोर्ट बताती है कि कारगर होने के लिए सुरक्षा व संरक्षा प्राप्त क्षेत्रों में जैव विविधता के लिए अहम स्थानों को भी समाहित किया जाना जरूरी है, मगर जैव विविधता के नजरिए से महत्वपूर्ण 1/3 क्षेत्रों को सुरक्षा हासिल नहीं है। बताया गया है कि सुरक्षा व संरक्षा प्राप्त इलाकों को चिन्हित करना और उनका लेखा जोखा तैयार करना अपर्याप्त है, उनके कारगर प्रबंधन की भी जरूरत है। फिलहाल चुनौती पहले से मौजूद और नए सुरक्षा व संरक्षा प्राप्त क्षेत्रों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। अनेक रक्षित क्षेत्रों में भी जैव विविधता में गिरावट दर्ज किए जाने पर चिंता जताई है। इसके समानांतर सुरक्षा व संरक्षा प्राप्त इलाकों को आपस में बेहतर ढंग से जोड़ने की जरूरत को भी रेखांकित किया गया है। इसके जरिए जीवों की प्रजातियों की स्वच्छंद व स्वाभाविक आवाजाही और पारिस्थितिकीय प्रतिक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है।
और अब एक मुलाकात संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक कैप्टन दीपक परिहार से, जो फिलहाल दक्षिण सूडान में यूएन मिशन में एक शांति रक्षक के तौर पर सेवारत हैं। 29 मई को यूएन शांति रक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले मैंने उनसे बात की और सबसे पहले उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहा।
मैं इंडिया में उत्तराखंड जगह के स्टेट से बिलोंग करता हूँ, बागेश्वर उत्तराखंड में। मेरा कमीशन इंडियन आर्मी में 2017 में हुआ था और उसके बाद करीब मैंने 2 साल इंडिया में ही अपनी भारतीय सेना में नौकरी की है। उसके बाद पिछले साल फरवरी 2020 को मैं यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान में पोस्ट हुआ।
तो जैसे आपने बताया इस वक्त आप भारतीय यूनिट के साथ हैं, तो एक आम दिन आपके लिए कैसा है, कौन कौन सी आपकी जिम्मेदारियां होती हैं?
अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूं तो आज के दिन मैं यूनिट के पर्सनल मैटर्स पे डील करता हूं। पर्सनल मैटर में आप कह लीजिए कि जो भी हमारे साथ यूनिट में यहाँ पे जो हमारे साथ ट्रूप्स हैं उनकी मूवमेंट हो गई, उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनकी डिसिप्लिन हो गया, तो इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्सनल अपॉइंटमेंट करता है यहाँ पे साउथ सूडान पे यूनाइटेड नेशन मिशन में, वो उसकी होती है, तो मैं इन सारी जिम्मेदारियों का भाग हूँ।
दक्षिण सूडान अभी एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, रोजमर्रा के काम में कभी कभी थोड़ी बहुत चुनौतियां मुश्किलें भी आती होंगी, वो किस तरह की चुनौतियां हैं आपके दैनिक कामकाज में और आप उन्हें किस तरह से दूर करते हैं, किस तरह से सुलझाते हैं?
अगर भारतीय सेना की तरफ से बात करूं तो ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसका भारतीय सेना मुकाबला नहीं कर सकती है। चुनौतियों मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चुनौती है कि जो हमें फेस करनी पड़ती है यहाँ पे। हमारा जो काम होता है, जो मैं जिससे डील कर रहा हूँ या यहाँ पे मेरे जितने भी कलीग्स हैं, वो जो भी काम करते हैं उसे पूरी दृढ़ निश्चय होकर वो काम करते हैं और उसे पूरा करने का हमेशा प्रयास करते हैं। और अगर कोई चुनौती आती है तो यहाँ पे हमारे सीनियर्स बैठे हैं, हमारे कलीग्स बैठे हैं, अगर हमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो हम अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को अप्रोच करना ठीक समझते हैं और किसी भी मुश्किल का समाधान हम निकाल लेते हैं।
अच्छा, आपने भारतीय सेना में काम किया और फिर अब आप यहाँ पर एक यूएन शांति रक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं, तो ये दो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तो है ही, इन दोनों अलग अलग भूमिकाओं में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं?
अगर मैं समानताओं की बात करूं कि भारत में काम करना और यहाँ पे काम करने में क्या है, तो एक तो यही है कि जो यहाँ पे हमारी साउथ सूडान में जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो थोड़ा अस्थिर है। तो हमारी भी, भारत में भी कई बहुत ऐसी जगहें हैं जो आपको पता होंगे जहाँ पे जो सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, उतनी स्थिर नहीं है, तो वहाँ पे भारतीय सेना डिप्लॉयड है। उसी तरीके से यहाँ साउथ सूडान में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो सिचुएशन है वो उतनी स्थिर नहीं है, तो वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए भारतीय सेना और बाकी देशों की भी सेनाओं को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि भारत में काम करने में क्या और साउथ सूडान में काम करने में क्या अलग है, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 1 साल का काम सेम है जो हम भारत में करते हैं या जो काम हम यहाँ करते हैं, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है कि वहां हम कैसे काम करते हैं, भारत में कैसे काम करते हैं, यहाँ पे कैसे काम करते हैं, काम करने का थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन जो चुनौतियां हैं, जो डिफिकल्टीज हैं और उन्हें पूरा करने का जो नियम है, जो कानून है, वो बराबर सेम है।
14 महीनों से आप दक्षिण सूडान में आपकी तैनाती रही है और पिछले करीब 1.5 साल से ही दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, ऐसे कठिन महामारी के समय में अपने परिवार से दूर रहना, एक नए देश में रहना, जो भी इस वक्त भावनात्मक मुश्किलें पेश आ रही हैं इस दौर में, उनसे जूझना, उनका सामना करना कितना कठिन सरल रहा आपके लिए?
बिल्कुल, हम अगर मैं अपनी यूनिट की और अपनी बात करूं तो हम पिछले साल फरवरी में, करीब फरवरी 2020 मिड में साउथ सूडान में डिप्लॉय हो गए थे, और जनरली वही पीरियड था जब कोरोना वायरस अपने प्रकोप पे था और मार्च में इंडिया में और बाकी दुनिया में भी लॉकडाउन लग गया था। तो उसके काफ़ी टाइम तक ना केवल मैं, मेरे यूनिट के जो बाकी लोग भी हैं, ट्रूप्स हैं, वो छुट्टी नहीं जा पाए। तो थोड़ा कठिन अवश्य था अपने परिवार से इतने लंबे समय तक दूर रहना, लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमने ये वर्दी क्यों पहनी है, तो वो सब चीज़ें हम दरकिनार कर देते हैं, दूर रख देते हैं, और अपना काम हम पूरी हिम्मत से और पूरे साहस से करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसके बावजूद हम अपने परिवार से, अपने मित्रों से हमेशा वीडियो कॉल के थ्रू या कॉल के थ्रू जुड़े रहते हैं। और फरवरी के बाद हम पहली छुट्टी अक्टूबर नवंबर में गए थे, तो वो बहुत अच्छा टाइम था अपने, थोड़ा जब हम इंडिया वापस गए थे।
यूएन शांति रक्षा मिशन में आप भारतीय यूनिट के साथ आए, ऐसे बहुत से अन्य सैन्यकर्मी होंगे, आपके साथी होंगे, जो आने का विचार कर रहे होंगे या आगे आने वाले महीनों और सालों में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
जो भी आगे आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बनने वाले हैं, जो हमारी बाद यहाँ पे अपनी कमान संभालेंगे और यहाँ पे शांति प्रचार करेंगे, उनके लिए एक सिंपल सा संदेश है कि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि वो दुनिया की जो शांति सिचुएशन है उसको बनाए रखें। तो जो भी आने वाले हैं उनके ये बहुत, वो अपने आप को लकी समझे, अपने काम पे गर्व करें, और जो भी वो काम यहाँ पे आके करें उसको पूरी निष्ठा से करें और हमेशा सच्चे मन से करें। मेरी उनसे बस यही आशा रहेगी।
ये थे दक्षिण सूडान के यूएन मिशन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे कैप्टन दीपक परिहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।